Ladies and gentlemen, good day and welcome to Gina Seco Lifecare Limited Q1 FY27 earnings conference call hosted by Go India Advisors. As a reminder, all participant lines will be in the listen-only mode, and there will be an opportunity for you to ask questions after the presentation concludes. Should you need assistance during this conference call, please signal an operator by pressing star, then zero on your touch-tone phone. I now hand the conference over to Ms. Soumya Chhajed from Go India Advisors. Thank you, and over to you, ma'am.
Good day, everyone, and welcome to Q1 FY27 conference call of Gina Seco Lifecare Limited. We have on call with us Mr. Manish Grover, the Managing Director, Mr. Ankush Kaushal, the Whole-time Director, and Mr. Nanak Chand, the Chief Financial Officer. We must remind you that discussions on today's call may include certain forward-looking statements and must therefore be viewed in conjunction with those pertaining to the business. I now request the management to take us through the business update, and post that, we'll open the floor for Q&A. Thank you, and over to you, sir.
हां, नमस्कार सभी को। सबसे पहले मैं आप सभी निवेशकों, विश्लेषकों और सभी स्टेकहोल्डर्स का धन्यवाद, जिन्होंने आज की अर्निंग कॉल्स में अपना समय दिया। हर क्वार्टर के रिजल्ट केवल नंबर की कहानी नहीं होते, बल्कि वो ये भी बताते हैं कि बिजनेस किस दिशा में जा रहा है और उसकी अंडरलाइन स्ट्रेटजी कितनी मजबूत है और आने वाले वर्षों के लिए फाउंडेशन कितना मजबूत बन रहा है। आज हेल्थ केयर एक महत्वपूर्ण बदलाव के दौर से गुजर रहा है। अब तक हेल्थ केयर का अधिकांश फोकस बीमारी होने के बाद उसके ट्रीटमेंट पर रहा है, लेकिन हमारा मानना है कि आने वाले समय में हेल्थ केयर का बड़ा अवसर प्रिवेंशन होगा। जो हम एक बचपन से कहावत सुनते थे, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मैं बोलता हूं, प्रिवेंशन इज द ओनली क्योर। बीमारी आने के बाद उसका इलाज कराने से बेहतर है उसे आने से पहले ही रोका जाए और यही जीना सीखो की सोच का आधार है। हमारा फोकस केवल लाइफ स्पैन पर नहीं, बल्कि हेल्थ स्पैन पर है, यानी व्यक्ति कितने साल जीता है, इसके साथ साथ कितने साल स्वस्थ और सक्रिय रहता है। हमारा बिजनेस मॉडल इसी फिलॉसफी को ग्राउंड लेवल पर एग्जीक्यूट करता है। हमारी पेशेंट जर्नी एक हॉस्पिटल एडमिशन से शुरू होना जरूरी नहीं है। एक व्यक्ति हेल्थ अवेयरनेस इनिशिएटिव या हेल्थ कैंप के माध्यम से हमारे इकोसिस्टम में प्रवेश कर सकता है। उसके बाद कंसल्टेशन, ओपीडी, लाइफस्टाइल कोचिंग, प्रोडक्ट और लॉन्गेविटी मतलब जिंदा लंबी कर कैसे जीना है, उसके जरिए हमारे साथ एंगेजमेंट बढ़ाता है और जहां इंटेंसिव ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, वहां यही जर्नी हमारे हॉस्पिटल और वेलनेस एंड वेलफेयर सेंटर में भी होती है। हमारा फोकस केवल आईपीडी और ट्रीटमेंट की तरफ चलती है, जहां पंचकर्मा और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के माध्यम से हम केयर प्रदान करते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि पेशेंट का रिलेशनशिप डिस्चार्ज के साथ खत्म नहीं होता। ट्रीटमेंट के बाद फॉलोअप, लाइफस्टाइल गाइडेंस और आयुर्वेदिक मेडिसिन के माध्यम से पेशेंट हमारे इकोसिस्टम में बना रहता है। इससे एक आईपीडी पेशेंट आगे चल के रेकरिंग प्रोडक्ट कस्टमर बन सकता है। इसी तरह दूसरी दिशा में हमारा मॉडल काम करता है। हमारे प्रोडक्ट्स कस्टमर, क्लाइंट सपोर्ट सेंटर और ओपीडी से जुड़े लोग जब आगे इंटेंसिव ट्रीटमेंट की आवश्यकता महसूस करते हैं, तो वे हमारे हॉस्पिटल में आईपीडी पेशेंट बन सकते हैं। यानी सर्विसेज और प्रोडक्ट हमारे लिए दो अलग-अलग बिजनेस नहीं है, दोनों एक दूसरे के लिए डिमांड और एंगेजमेंट का सोर्स है और इस पूरे मॉडल का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है ट्रस्ट। जब पेशेंट को क्लिनिकल आउटकम मिलते हैं, तो वह अपने अनुभव से संतुष्ट होता है और वही एक्सपीरियंस हमारे लिए वर्ड ऑफ माउथ और नए पेशेंट एक्विजिशन का माध्यम बनता है और इससे समय के साथ कस्टमर रिलेशनशिप मजबूत होती है और एक्विजिशन इकोनॉमिक्स बेहतर होता है। क्वार्टर वन FY27 में हमने इसी मॉडल के एग्जीक्यूशन और हमारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में भी आपको दिख रहा होगा। इस क्वार्टर में हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 224 करोड़ रहा, जबकि EBITDA 92 करोड़ और PAT 65 करोड़ रहा। हमने 41% EBITDA मार्जिन और 28% PAT मार्जिन डिलीवर किया है। ये नंबर केवल एक क्वार्टर की परफॉर्मेंस नहीं दिखाते, बल्कि उस ऑपरेटिंग मॉडल की स्ट्रेंथ को भी रिफ्लेक्ट करते हैं, जिसे हमने स्केल के साथ बिल्ड किया है। अब हमारा अगला फेज केवल फिजिकल एक्सपेंशन तक सीमित नहीं है। हम टेक्नोलॉजी को प्रिवेंटिव हेल्थ केयर जर्नी का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाना चाहते हैं और लॉन्ग टर्म विजन इसी दिशा में है। मैंने पहले भी कई बार बोला, हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर नहीं, हमें तो ईयरली सिस्टम के अकॉर्डिंग जज करो, क्योंकि हम लोग बहुत बड़ा एक इकोसिस्टम डेवलप कर रहे हैं जिसका रिफ्लेक्शन अगले 2 से 3 साल में नजर आएगा। और लंबी अवधि में जीना सीखो को एक ऐसा हेल्थ ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना चाहते हैं जहां किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए अवेयरनेस, कंसल्टेशन, ट्रीटमेंट, प्रोडक्ट, कंटिन्यूस प्रिवेंशन केयर, इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम और वेलनेस, ये सब एक साथ ही उपलब्ध हो। हम मानते हैं कि हेल्थ केयर में अगला बड़ा अपॉर्चुनिटी केवल अधिक पेशेंट को ट्रीट करने में नहीं, बल्कि लोगों को साथ लंबे समय तक जुड़े रहने और उन्हें स्वस्थ बनाए रखने में है। इसीलिए हम ऐसा मॉडल लॉन्च कर रहे हैं जो पेशेंट रेकरिंग लेवल पे अपना पंचकर्मा कराने रेगुलर डे केयर में भी आता रहेगा। इसी विजन के साथ हम अपने नेटवर्क, क्लिनिकल कैपेबिलिटीज, टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट इकोसिस्टम में लगातार निवेश कर रहे हैं। हमें विश्वास है कि प्रिवेंशन फर्स्ट अप्रोच, मजबूत एग्जीक्यूशन और डिसिप्लिन्ड कैपिटल एलोकेशन के साथ जीना सीखो आने वाले वर्षों में सस्टेनेबल ग्रोथ के साथ अपने सभी स्टेक होल्डर्स के लिए मीनिंगफुल लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएट करने में की स्थिति में है। अंत में हमारी सोच बहुत सरल है, बीमारी का इलाज करना हेल्थ केयर का एक हिस्सा है, लेकिन लोगों को स्वस्थ बनाए रखना हेल्थ केयर का भविष्य है जिस पर हम काम कर रहे हैं। और इसी भविष्य को बनाने के लिए जीना सीखो लगातार दिन दोगुनी रात चौगुनी गति से काम कर रहा है। अब इसी के साथ में आप हमारे CFO श्री नानक चंद जी को आमंत्रित करता हूँ जो Q1 FY 27 के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की विस्तृत जानकारी देंगे। धन्यवाद। जय हिंद।
थैंक यू आचार्य मनीष जी। गुड आफ्टरनून एवरीवन। I will walk you through the financial performance gone by. We commenced FY 27 on healthy note with both our Ayurveda healthcare service and products business delivering strong underlying performance on yearly basis. Revenue operation grew by 29% YoY. Q1 FY 27 supported by the higher patient footfalls, expansion of our service network, continued momentum in our products business. Profitability remained robust with EBITDA growing 17% on YoY basis and EBITDA margin sustaining at healthy 41%. The margin performance reflects improving the operating leverage, better utilization of our existing infrastructure and increased scalability across the businesses. Within our Ayurveda healthcare service business, underlying demand remain strong with Panchkarma revenue growing 13% in Q1 FY27, supported by 33% YoY increase in IPD patient and 31% increase in daycare volume. Our Ayurveda healthcare product business continued to perform the strongly growing 47% YoY during the quarter. The growth was driven by the broader product portfolio and expanding customer base and increasing the acceptance of the quality-focused Ayurveda offerings. Going forward, we remain focused on strengthening our products franchise and leveraging our expanding healthcare ecosystem to drive cross-selling and deeper customers' engagement. Thank you very much.
Namaskar. तो मैडम अब आप सवालों के लिए लाइन ओपन कर सकते हैं।
थैंक यू वेरी मच। वी विल नाउ बिगिन द क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। एनीवन हु विशेस टू आस्क अ क्वेश्चन मे प्रेस स्टार एंड 1 ऑन देयर टचस्टोन टेलीफोन। इफ यू विश टू रिमूव योरसेल्फ फ्रॉम द क्वेश्चन क्यू यू मे प्रेस स्टार एंड 2। पार्टिसिपेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू यूज हैंडसेट्स व्हाइल आस्किंग अ क्वेश्चन। Ladies and gentlemen, we will wait for a moment while the question queue assembles. The first question is from the line of Karanveer Singh from Nuvama Health. Please go ahead.
Namaskar. Thank you, madam.
Namaskar, Karanveer ji. How are
you? Yes, yes, okay.
Yes, tell me.
First of all, बधाई। नंबर आपके अच्छे आए। 2-3 चीज थोड़ा सा इसमें जो समझना था कि मुझे लग रहा है कि ईयर ऑन ईयर तो नंबर अच्छे आए लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा सा फ्लैटिश हो रहा है रेवेन्यू। तो एक तो
नहीं सर, आप
क्लैरिटी बहुत
क्वार्टर क्वार्टर आप क्वार्टर नो क्वार्टर जज मत करो ना भाई। आप अगर मेरे पेशेंट और नंबर काउंट देखोगे तो टोटल क्वार्टर नो क्वार्टर मेरी 10% की ओवरऑल ग्रोथ है। हम हर बार बिजनेस को अलग नजरिए से चेंज भी तो करते ना फ्यूचर के हिसाब से।
जी जी
अगर
नहीं
मुझे
तो आ,
टर्नओवर को 3,000 करोड़ लेके जाना है तो मुझे उसके लिए स्ट्रेटजीज तो चेंज करनी पड़ेंगी ना, कि पेशेंट बार बार आए, रेकरिंग आए, पेशेंट हेल्दी रहने के लिए सीखने आए। तो हमने जो हमारा डे केयर पर डे था वो 16,000 से 19,000 भी तो किया है ना, जो कि अब मेरा आगे नंबर बढ़ता चला जाएगा। मैं आपको बता दूं, खैर अभी पहले अपना सवाल पूछ लो पूरा।
जी तो नहीं, मैं नंबर ये देख रहा था कि पिछले 5 क्वार्टर में जो हमारा सर्विसेज बिजनेस है ये 95 करोड़ से 100 के बीच में रहा, इस बार 105 है, जबकि हमारा नंबर ऑफ बेड भी बढ़ गया है। तो
सर,
ये लग
सर
रहा
आप
था
एक चीज
कि
नोटिस करो ना, मैंने सरकारी बिजनेस खत्म भी तो किया है ना। जो बिजनेस मेरा उधार फंसता था, अगर वो बिजनेस मैं कंटिन्यू करूंगा तो उधार आगे भी फंसता रहेगा। मैंने जब आप क्वार्टर टू क्वार्टर देखोगे ना, तो मैंने गवर्नमेंट बिजनेस को भी तो 1/3 कर दिया ना ईयरली क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पे, लेकिन प्राइवेट बिजनेस को मेंटेन भी रख रहा हूँ, रेगुलर ग्रो भी कर रहा हूँ। सर जो गवर्नमेंट बिजनेस है ना, सरकारी पेशेंट भर्ती करना, उसमें पेमेंट में आने में टाइम बहुत लगता है। तो क्या होता है कि हमने धीरे धीरे उस बिजनेस को कम किया और अपनी पुरानी फंसी हुई पेमेंटें निकाली और एक नया कैश रिच बिजनेस मॉडल डेवलप कर दिया ना।
जी तो
और साथ में हमने
ये
अपना प्रोडक्ट लाइन को भी बढ़ा दिया हमने।
हाँ, तो मेरा क्वेश्चन एक्चुअली वही था कि हमारा आगे फोकस प्रोडक्ट पर ज्यादा है, सर्विसेज पर ज्यादा है,
नहीं
हमारा
सर
ग्रोथ
नहीं,
प्रोडक्ट
हमारा
में ज्यादा होने
हमारा
वाला है।
वही पहले वाली हमारी स्ट्रेटजी है, 7 से 10 हजार बेड करने हमने अगले 3 से 5 साल में। जो मैंने पिछले कॉन कॉल में बोला था 3,000 करोड़ के टर्नओवर पे, मेरा लगभग 3 साल पे और मैक्सिमम 5 साल से पहले पहले मैं इसको अचीव कर लूंगा, और ईयर और ईयर लगभग 30% की ग्रोथ को मेंटेन करूंगा। मेरा वही बिजनेस मॉडल है जो मैंने पहले कॉन कॉल में बोलता आ रहा हूं मैं। वो आप मैंने कई बार बोला ना, क्वार्टर ऑन क्वार्टर में क्या होता है कि आप लोग जैसे इस क्वार्टर में मेरे खर्चे बुक हो गए आगे की एड के, जो मैंने कलर्स टीवी के साथ एग्रीमेंट किया या कोई और चैनल के साथ एग्रीमेंट किया, अब उसका इफेक्ट अगले क्वार्टर में दिखेगा, लेकिन खर्चा बुक अभी हो गया इस क्वार्टर में। सेम ये वही बात है, जैसे 2024-25 में हमारा प्रॉफिट लोगों को जरा कम हो गया, लेकिन अगले क्वार्टर में हम मतलब ग्रोथ को, हमने जब 24-25 की कॉन कॉल खत्म की थी तो हमने लोगों को 120-130 करोड़ का प्रोजेक्शन दिया था, लेकिन पहले क्वार्टर में हम 51 करोड़ प्रॉफिट ले आए थे। क्योंकि जो हम एक्सपेंशन करते हैं या जो हम स्ट्रेटेजी में चेंजेस करते हैं, उसका इफेक्ट तो उस क्वार्टर में नहीं दिखता, उसका इफेक्ट अगले क्वार्टर्स में दिखता है लगातार।
तो अभी एडवर्टाइजमेंट पर कितना कॉस्ट जा रहा है अपना
जैसे एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट वही है, लेकिन हमने कुछ नए प्लान शुरू किए हैं। हमने कुछ जैसे अभी मान लो इस क्वार्टर में तो मेरा 4 करोड़ का एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस बढ़ गया, लेकिन उसका जो अभी जो उसका आउटकम आएगा वो अगले क्वार्टर में आएगा, क्योंकि मैंने जो पैसा दिया जिसकी वजह से मेरे चैनल बुक हुए कुछ, जैसे खतरों के खिलाड़ी में हम प्रोडक्ट और सर्विसेज को लेके आ रहे हैं, सास भी कभी बहू एक सीरियल आता है कलर्स पे, उसके बीच में मेरी इंटीग्रेशन है, एक अनुपमा नाम का सीरियल है उसके बीच में मैं आया हूँ। अब पैसे तो पूरे बुक हो गए क्वार्टर में, लेकिन सिर्फ लाफ्टर शेफ इस साल आया इस क्वार्टर में, बाकी सारा इफेक्ट अगले क्वार्टर में आएगा, क्योंकि ये 6 महीने की स्ट्रेटेजी है कलर्स टीवी के साथ हमारी, जो रेगुलर हमें ब्रांड बिल्ड करने में, हमें वेलनेस का एक नया इकोसिस्टम डेवलप करने में हेल्प करेगा, लेकिन उसका खर्चा बुक पहले हो जाता है।
जी तो अभी और भी लोग होंगे क्यों गए, तो मैं अपना क्वेश्चन थोड़ा जल्दी खत्म कर लेता हूँ। तो ये इसमें एडवर्टाइजमेंट बेसिकली ये समझ दे कि जब प्रोडक्ट पर फोकस होगा तो कंटिन्यूअस एडवर्टाइजमेंट पर एक्सपेंस आएगा। तो मेरा समझना ये था कि आगे अगर, क्योंकि प्रोडक्ट पर फोकस अभी मैं प्रेजेंटेशन
नहीं, नहीं सर, हमारा हमारा
तो
फोकस दोनों तरफ, मैंने पहले दिन से बोला है कि मैं 50-50 ही चलूंगा दोनों को लेके, और जो प्रोडक्ट खरीदता है ना बाद में वो हॉस्पिटल में एडमिट होता है, और जो एडमिट होता है वो बाद में प्रोडक्ट खरीदता है, हमारा तो इकोसिस्टम ही दोनों को एक साथ डेवलप करने का है
जी। तो
जैसे आप मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे मेडिसिन सेल क्वार्टर वन में 80 करोड़ थी और क्वार्टर फोर में 118 करोड़ थी और इस बार भी 118 करोड़ है, तो प्रोडक्ट बिजनेस तो बराबर रहा इस क्वार्टर में। और अब मैं बताता हूँ आपको मेडिसिन अपने पंचकर्मा सेल प्राइवेट 78 करोड़ थी जो इस बार 100 करोड़ है क्वार्टर टू क्वार्टर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, यानी कि लगभग लगभग मान के चलो 30% से ऊपर ग्रो किया है। अब सरकारी बिजनेस 15 करोड़ का इस क्वार्टर में 5 करोड़ हो गया, तो 10 करोड़ का वहां से हॉस्पिटल बिजनेस डाउन हुए, जिसको आप डाउन नहीं कह सकते, मैंने उधार का धंधा बंद किया है। लेकिन अगर आप ओवरऑल भी देखोगे तो ओवरऑल भी मेरी जो टोटल सेल है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 174 करोड़ थी क्वार्टर वन में, इस क्वार्टर वन में 224 करोड़ है
जी।
मतलब मैंने तो ये बात बोला कि मुझे ईयर ऑन ईयर ग्रोथ पे जज करूंगा
जी। तो ये जो 118 करोड़ का सेल्स है,
सॉरी टू इंटरप्ट मिस्टर करणवीर, सॉरी टू इंटरप्ट, मे बी रिक्वेस्ट
दैट यू रिटर्न टू द क्वेश्चन है
जी, मे बी रिक्वेस्ट यू टू रिटर्न टू द क्वेश्चन क्यू फॉर एनी फॉलो अप क्वेश्चन।
थैंक यू रणवीर।
क्वेश्चन इज फ्रॉम द लाइन ऑफ पाल बलार फ्रॉम त्रिनेत्र एसेट मैनेजर, प्लीज गो अहेड।
हेलो मनीष जी, थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। बट सर मुझे यही जानना था कि ये जो एंटेरो वाला जो ओटीसी प्रोडक्ट सेल करने का जो हमारा विचार था उस पे आपका अभी क्या बन रहा है, मतलब क्या डिस्कशन हो रहे
हैं? सर एंटेरो वालों से आज सुबह ही बात हुई है और पिछले हफ्ते हमारी टीम की उनसे 1-to-1 जूम मीटिंग हुई है, वो लोगों ने टेस्टिंग कम्प्लीट कर ली अपनी और शायद 15 दिन के अंदर प्रोडक्ट हमारे उनके सारे डिस्ट्रीब्यूटर को दिखने लग जाएंगे, क्योंकि पिछले 2 महीने तो उनके सॉफ्टवेयर ने टेस्टिंग में ले लिए। तो हमारी जो लास्ट वीक फाइनल मीटिंग हुई थी तो वो सारी टेस्टिंग कंप्लीट हो चुकी है, तो विद इन टू वीक्स में प्रोडक्ट डिस्प्ले में आ जाएंगे सारे।
और ये जो 70 वाला जो था वो भी हम अभी भी वो कंटिन्यू?
हाँ, 70 के साथ हमारी लगातार रेगुलर उनसे मीटिंग चल रही है हमारी, और जैसे ही हमारी नई एड बन जाएगी तो हम सत्कर्ता भी उसको रन करेगा और पेशेंट को हमारे यहाँ भेजेगा एडमिट करने के लिए। वो जो हमारा एग्रीमेंट हुआ वो सबसे ना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें।
ओके ओके।
असल में होता क्या है सर, एक क्वार्टर खत्म होता है, 1.5 महीने बाद कॉन कॉल होती है, उसके बाद फिर 1.5 महीने में क्वार्टर ही खत्म हो जाता है, तो इतना वो स्ट्रेटजी बेसिस पे टाइम ही नहीं मिलता जितना उतनी जल्दी फिर सवाल आ जाता है। कहने का मतलब ये है कि हम जो बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं ना, हम वो फ्यूचर के लिए बिल्ड कर रहे हैं कि लोग बीमार ही ना पड़े, और प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, प्रिवेंशन के लिए आए। और हमने उसमें अभी पिछले इस क्वार्टर में हमें सफलता भी मिल गई है। अगर आप चाहो तो मैं सारे जो लोग सुन रहे हैं कॉन कॉल पे मैं नंबर देना चाहूंगा, पिछले क्वार्टर में टोटल 4,87,000 लोग जुड़े थे हमसे, 4,87,000 टोटल काउंट नंबर ऑफ, जिसमें ओपीडी आईपीडी डे केयर सीओडी और ई कॉम और कंसल्टेशन थी 4,87,000। अगर मैं क्वार्टर फोर से क्वार्टर वन देखूं तो इस क्वार्टर में हमसे 5,34,000 लोग जुड़े हैं, यानी कि ओपीडी में 1,000 पेशेंट बढ़े, 1,50,000 के 51 हुए, आईपीडी में 10,900 से 11,500 हुए, 600 लोग बढ़े, और डे केयर जो हमने नया इनिशिएटिव लिया है कि जो भी हमारा प्रोडक्ट खरीद रहा है हम उसको डे केयर में बुला के एक्सपीरियंस करवा रहे हैं पंचकर्मा का, और जो भी आईपीडी में जा रहा है उसको बोल रहे हैं अब अपने लोकल सेंटर में डे केयर करा ले, तो वो 16,700 से 19,400 हुआ है डे केयर का नंबर, और टिकट साइज भी बढ़ा है मेरा 500 रुपए से। सीओडी जो मेरी पहले 14,000 थी वो इस क्वार्टर में 18,500 हुई है। ई कॉम का जो मेरा नंबर था वो 2,28,000 था, जो पेशेंट ने प्रोडक्ट डिलीवरी घर पे मंगवाई, इस बार वो नंबर बढ़ के 2,64,000 हुआ। तो टोटल नंबर अगर मैं कंसल्टेशन को भी जोड़ दूं तो 4,87,000 था लास्ट क्वार्टर में और इस क्वार्टर में वो 5,34,000 हो गया। तो अगर मैं पूरे क्वार्टर ऑन क्वार्टर अपने नजरिए से ग्रोथ देखूं तो मेरी ग्रोथ 10% की है नंबर वाइज, क्योंकि यही नंबर बाद में मेरे आईपीडी में इन्वॉल्व होंगे, यही नंबर मेरे प्रोडक्ट में इन्वॉल्व होंगे, यही नंबर मेरे ओपीडी में इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि पेशेंट तो वही घूमता है ना, क्योंकि पूरे इकोसिस्टम हमारा डेवलप हुआ हुआ है जी। सर
The participant has been disconnected. The next participant is from the line of Aditya Chheda from InCred Asset Management. Please go ahead.
जी नमस्कार सर.
नमस्कार सर. सर हेल्थकेयर सर्विसेज में आईपीडी की ग्रोथ 33% है, ओपीडी की ग्रोथ 21% है, बट रेवेन्यू ग्रोथ 11% दिख रही है, तो ये थोड़ा समझाएंगे ऐसा क्यों?
मुझे समझ नहीं आया, दोबारा पूछो क्वेश्चन अपना.
सर आईपीडी की जो वॉल्यूम ग्रोथ है क्वार्टर वन की वो 33% है, 8600 लास्ट ईयर से 11500, और ओपीडी की जो ग्रोथ है वो 21% है वाईओवाई, बट रेवेन्यू ग्रोथ 11% है. तो
नंबर देख लू जो आप पूछ रहे हो, मैं इसमें बुको. आप हमारी बुकलेट खोल रखी है क्या आपने?
हाँ है मेरे, आपको मैं स्लाइड नंबर बताता हूँ.
हाँ हाँ मैं देखे, मैंने निकाले 11 नंबर पेज है ना. आप कह रहे हो आईपीडी जो होता है वो होता है पेशेंट एडमिट होना, वो 8600 से 11500 हुआ क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप कह रहे हो, यानी कि 33% का चेंज है वाईओवाई. हाँ वाईओवाई.
हाँ 33%
क्वार्टर ऑन क्वार्टर 5% है ना?
करेक्ट करेक्ट.
और ओपीडी में आप कह रहे हो 22% है.
हाँ बट रेवेन्यू ग्रोथ 11% है, तो इसमें क्या चेंज हुआ है? क्योंकि जितना वॉल्यूम अगर 33% या 20% बढ़ता है बट रेवेन्यू 11% ही बढ़ा है.
नहीं सर मैं आपको एक और बताता हूँ, आपने एक नंबर और देखो, डे केयर वॉल्यूम. डे केयर वॉल्यूम भी ईयर ऑन ईयर 31% चेंज है, लेकिन आप ना एक चीज और नोटिस करो उसी मैट्रिक्स में, चौथे नंबर वाली शीट देखो, जहाँ पे ओपीडी सीओडी एंड कंसल्टिंग पेशेंट है, वो ईयर ऑन ईयर 143% का चेंज है. सर हम ना पेशेंट को पहले गाइड करते हैं घर पे ठीक होने की तरीके, हम ना पेशेंट का फेथ जीतते हैं, हम पेशेंट का ट्रस्ट जीतते हैं, जिससे पेशेंट बाद में हमारे पंचकर्मा में आके एडमिट होता है. तो हमने ओपीडी सीओडी और कंसल्टेशन तीनों को बढ़ाया, और अगर आप वीओपीडी कंसल्टेशन देखोगे तो ईयर ऑन ईयर मेरी 65% चेंज है, उसी स्लाइड के साथ पांचवा नंबर है जो. सर ये जो सारा बिजनेस मॉडल है ना हमारा, ये आपस में ना कोरिलेटेड है. आप उसमें खाली एक नंबर देखोगे कि ये 22% क्यों बढ़ा, तो फिर ये 143% क्यों बढ़ा कंसल्टेशन. सर कंसल्टेशन के बाद ही तो ओपीडी में आएगा ना, और कई बार ओपीडी में नहीं आके वो डायरेक्टली मेरी वेबसाइट पे जाके प्रोडक्ट खरीद लेता है, क्योंकि वहां पे 5% का डिस्काउंट मिलता है. सर हम ना भविष्य का इकोसिस्टम डेवलप कर रहे हैं, अगले 2 साल बाद 3 साल बाद 5 साल बाद हमें तो 3000 करोड़ का टर्नओवर पे आना है, और मुझे तो 7 से 10 हजार बेड लेके आने हैं, और मुझे ऑक्यूपेंसी भी 75-80% लेके जानी है. मैं फिर इन छोटी चीजों में नहीं घुसता, मैं तो लार्जर स्केल पे चल रहा हूँ कि मुझे तो ओवरऑल ग्रोथ लेके आनी है. अब उसमें कोई नंबर किसी महीने ऊपर जाएगा, किसी क्वार्टर में वो नीचे आएगा, लेकिन मेरा जो टारगेट है वो अर्जुन की आंख की तरह है कि मुझे भारत में एक प्रिवेंटिव का हेल्थ केयर सिस्टम डेवलप करना है, जिसका टर्नओवर अगले 3 साल में मैं पूरा ट्राई मारूंगा, पूरा जोर लगाऊंगा, 3 साल में यही तो 5वें साल से पहले पहले 3000 करोड़ आ जाएगा, और मैं 1000 करोड़ के पैट के ऊपर वर्किंग कर रहा हूँ. मैं तो उस तरीके से दिमाग लगा रहा हूँ कि आज मैं क्या डेवलप करूं जिससे 3 साल बाद मैं 1000 करोड़ के प्रॉफिट पे जाने की प्लानिंग करूं. अभी मैं अल्ट्रा लग्जरी वेलनेस में भी कूद रहा हूं पहली बार. अब मेरा पहला सेंटर खुलने दो, आप देखना सारे वीवीआईपी वही होंगे, वहां एक एक कमरा मेरा 35-35 हजार का बिकेगा. अब मेरी कॉस्ट तो वही रहनी है ना.
राइट.
वहां पे तो आचार्य जी कोई अपनी ऑपरेटिंग कॉस्ट ही नहीं है सिवाय वेज कॉस्ट के.
हमने जो अपना ये नया अल्ट्रा लग्जरी वेलनेस शुरू करा है सर, ये मेरा पहला मॉडल है. इसके अलावा मेरी कम से कम 4 कंपनियों से बहुत बात चल रही है. जैसे ही मेरा एक मॉडल वर्किंग में आ जाएगा, मैं 3 या 4 की और प्लानिंग कर रहा हूँ. अंकुश जी हमारे साथ ही है, और यहाँ हमारा कोई कॉस्ट ही नहीं है, ना मेरे को वेटर को पैसे देने हैं, ना मुझे कुक को पैसे देने हैं. मैंने एक मॉडल ही ऐसा डेवलप करा है जिसमें सिंपल सीधा प्रॉफिट है मुझे, वही प्रॉफिट जो मेरा 40% प्लस अबीटा वाला मॉडल, मैंने वहां भी वही लागू किया है.
समझ गया सर. सेकंड क्वेश्चन मेरा
सॉरी टू इंटरप्ट आदित्य, मे वी रिक्वेस्ट दैट यू रिटर्न टू द क्वेश्चन क्यू फॉर एनी फॉलो अप क्वेश्चन.
बाई चांस अगर इस ऑन कॉल में किसी का क्वेश्चन रह जाता ना मैम, तो नानक जी ने एक मेल आईडी दी हुई है सीएफओ सर ने, तो उस पे मेल पे क्वेश्चन कर दोगे हम आंसर कर देंगे सर, बाई चांस किसी का क्वेश्चन रह जाता है तो. थैंक यू.
थैंक यू. Ladies and gentlemen, in order to ensure that the management is able to address questions from all participants in the conference, please limit your questions to two per participant. The next question is from the line of Rasmik from Nine Rays Equity Research. Please go ahead.
Namaskar, Acharya ji.
Namaskar.
Thanks for the opportunity. Sir, ek khali question tha quarterly results pe. If I see the other income, last 3 quarters, September mein 1 crore tha, December mein 3 crore, March mein 4 crore, wo seedha 4 se 14 crore ho gaya hai. Abhi if I look at the March 25-26 balance sheet, कैश इन बैंक बैलेंस अभी 108 crore, तो ये जो 40 crore है इसमें कुछ वन ऑफ है सर कि हाउ डू यू सी द अदर इनकम गोइंग फॉरवर्ड, बिकॉज व्हाई आई एम आस्किंग, अगर मैं ये 14 के बजे पहले के जो मार्च क्वार्टर के 4 crore रिज्यूम करता हूँ तो आपका पीएटी जो है वो 51 crore से 56 crore हो जाता है 66. तो जस्ट जानना था 14 crore, इज इट इज देयर सम एक्स्ट्रॉर्डिनरी वन टाइम इनकम गोइंग फॉरवर्ड, हाउ डू यू सी दिस अदर इनकम फॉर द नेक्स्ट 3 quarters?
आप सर नानक जी दे देंगे ज्यादा बढ़िया रहेगा.
हाँ सर, इसमें जो अपना वन टाइम हमने अदर इनकम बुक किया है वो अराउंड 7 crore है, जिसमें अराउंड 5 crore वर्ल्ड वैल्यूएशन है, 2.5 crore इज कैपिटल गेन इनकम. सो दिस इज वन टाइम इनकम. इन फ्यूचर मे बी देर इज ए वर्ल्ड वैल्यूएशन वेरिड, बट बाकी कांस्टेंट है, जो हमारा 4 से 5 crore रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा. मोर देन दैट मे बी अदर इनकम म्यूचुअल फंड, अगेन ऑन म्यूचुअल फंड एंड अनदर हमारे फिक्स्ड डिपॉजिट्स.
थैंक यू सो मच सर. सेकंड क्वेश्चन इज रिगार्डिंग दिस अल्ट्रा वेलनेस, वी बहुत हम लोग भी चालू कर रहे हैं मनाली में, इसका ये साल में कितना, ये साल में उसका
सर जीना जी को प्रीमियम वो
अर्जना
वेलनेस उसका पहले नाम था, इसलिए एग्रीमेंट में वो नाम आ रहा है.
अच्छा अच्छा ओके ओके. हाँ जस्ट पूछना है सर, इस साल उसका रेवेन्यू और उसका एबिटा कितना आ सकता है सर FY 2027 में?
2027 में तो बहुत ज्यादा नहीं आएगा, 2028 में बहुत.
आई कैन आंसर
नहीं आएगा क्योंकि अक्टूबर में वो स्टार्ट हो रहा है, सितंबर अक्टूबर में, नवंबर दिसंबर में भयंकर सर्दी पड़ती है, तो हमारे पास एक ही जनवरी फरवरी तक ठंड पड़ती है मनाली में, तो हमारे पास जो बेस्ट बेनिफिट आएगा मार्च से शुरू होगा. लेकिन हमारे को खर्चा नहीं है कोई, वहां पे लॉस नहीं है क्योंकि जितना हमने मिनिमम एक्सपेंस किया प्रॉफिटेबल पहले दिन से रहेगा वो, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी बुकिंग उसकी आ चुकी है कि हमें वहां जाना है. लेकिन हमने उनसे भी पेमेंट ली लोगों से क्योंकि डेट स्टार्ट हो जाएगी. मैं अब चाहता था अंकुश एक बार आप बता दो प्लीज उसका मैट्रिक्स
FY 2028 का भी आप दे दोगे तो हेल्पफुल सर.
जी सर, थैंक यू वेरी मच. हाई एवरीवन, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम. आई लाइक टू थ्रो सम, दिस इज अंकुश कौशल. आई विल लाइक टू थ्रो सम लाइट ऑन द क्वेश्चन आस्क्ड अबाउट दिस प्रीमियम वेलनेस सेंटर दैट वी आर एडिंग इनटू आवर पोर्टफोलियो. तो यू आस्किंग अबाउट द बिजनेस प्रोजेक्शन ऑफ दैट. सो सिंस इट इज अ यूनिट दैट कंसिस्ट ऑफ 108 रूम्स एंड प्लस 22 विलास, वी राइट नाउ आर वर्किंग ऑन अ मिनिमम गारंटी ऑफ 35 रूम्स. सो विद एन average occupancy expected for the first 12 business months would be 50% with an ADR of 32,000-35,000 and with overall gross margins of around 50-55% with an EBITDA coming to approximately 35-40+% for year one. And year two, we are looking at 60% occupancy with near about 7,700 occupied room nights with an ADR of 35,000-37,000 with overall gross operating margin of near about 60-62% and at a very bare minimum operating cost of 9-10% only. Now this is where we have changed the whole dynamics of this business, because such minimal operating cost is impossible in such a luxurious setup of a wellness resort, that too in the mountains. However, we have done a very strategic deal in which all we have to bear is marketing and the wage cost. Neither we are paying for heat, light, power, nor we are paying for any other wage cost than doctors and healers. So everything, so same front office team to security team to food and beverage team to your chefs to food cost to beverage cost, to housekeeping, to laundry, to maintenance, to every single thing is already been taken care of within the deal that we have done. So that's why it will run on a operating cost which will be very very minimalistic.
और ऐसे ही हम और डील्स भी ढूंढ रहे हैं इंडिया में, तो हम पूरे इंडिया के अलग अलग चार कोनों पे ऐसे तीन से चार लग्जरी प्रीमियम वेलनेस लॉन्च करने की प्लानिंग कर रहे हैं, जो हमें एक एक सेंटर कम से कम भी लगभग 3 से 5 करोड़ का प्रॉफिट देगा, हमने जो दिमाग लगाया है नेट प्रॉफिट।
शुक्रिया।
के अलावा ना हमारा मेन जो बनेगा ना यहाँ से, वो बनेगा हमारा मार्केट इमेज, और यहाँ से हमें कस्टमर मिलेगा दूसरे सेंटर्स के लिए भी, मतलब जो हमारे बाकी सेंटर्स चल रहे हैं ना उसका भी बेनिफिट हमें यहाँ से मिलेगा, क्योंकि जो अफोर्ड नहीं करेगा वो दूसरों में जाएगा, मेरठ वाले में या मुंबई में, पनवेल वाले में या लखनऊ वाले में, कुरुक्षेत्र वाले में, ऐसे जाएगा वो। थैंक यू।
थैंक यू सो मच। आई विल कम बैक इन द क्यू सर। शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक।
थैंक यू। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द लाइन ऑफ दीपक पोद्दार फ्रॉम सफायर कैपिटल, प्लीज गो अहेड।
नमस्कार दीपक जी।
या नमस्कार, थैंक यू वेरी मच सर फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। सर जस्ट ये पूछना था, ये फर्स्ट क्वार्टर में हम लोगों का वन ऑफ एक्सपेंस कितना है? आपने आपने कुछ एड एक्सपेंस बताया था 4 crores, सो इज देयर एनी अदर वन ऑफ कॉस्ट?
ये हमारा ना नया सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, क्योंकि हम लोग ना एक लॉन्च कर रहे हैं रेकरिंग सिस्टम के लिए, कि जो पेशेंट का हम एक लॉन्च कर रहे हैं, मतलब रिटेंशन प्लान, कि वो एक ऐप के थ्रू पंचकर्मा डेवलप कर पाए और हर 3 महीने 6 महीने बाद पंचकर्मा करवाने आए। तो एक बार नानक जी आप बताना, आपकी आवाज नहीं आ रही सर। हेलो मैम, शायद सर की आवाज नहीं आ रही, बंद हो गई है।
वी रिक्वेस्ट मिस्टर दीपक टू कम बैक।
हेलो आई एम ऑडिबल।
यस यस दीपक की आवाज आ रही है,
प्लीज गो अहेड।
हाँ हाँ, सो मैं सुन रहा था, आई मीन आई थिंक नानक जी।
सो हाय दीपक जी, सो हमने अभी क्वार्टर में जो एडवर्टीजमेंट का बजट है वो 25% से इंक्रीज किया है, जिसमें हमने कुछ न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं 6 to 7, और जो इनका जो एडिशनल बेनिफिट है वो आने वाले क्वार्टर में हमें मिलेगा। इसके अलावा हम अभी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में भी हैं, जिसमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, तो उसमें अराउंड 2 crore के अराउंड हमारा वन टाइम इंस्टॉलमेंट एक्सपेंस जो है वो बुक हुआ है। इसके अलावा कॉर्पोरेट गवर्नेंस में लाइक ऑडिट फीस एंड ये भी वन ऑफ दी इंक्रीमेंटल एक्सपेंस हुआ है एज कम्पेयर विद लास्ट क्वार्टर एवरेज जो एक्सपेंस है हमारे। सो दीज आर एक्सपेंस जो थोड़ा इस बार हायर साइड हमारे बुक हुआ।
और सर एक ना पीछे आपको बताऊंगा, गवर्नमेंट के वेजेस लॉ चेंज हुए थे, तो नेचुरली बात है उसका इम्पैक्ट भी आएगा, लेकिन वो अब ओवर रूटीन का पार्ट बन जाएगा।
ओके ओके, तो टोटल कॉस्ट कितना, आई मीन एड एक्सपेंस आपने 4 crore बोला, 2 crore आपका ये जो सॉफ्टवेयर का।
4 crore लास्ट क्वार्टर से बढ़ा हुआ है, बिकॉज वो बुक एक्स्ट्रा हुआ है, क्योंकि जो उसमें हमने बुक करा ना उसमें हमने अपना वेलनेस की एक जर्नी को हमने कुछ चैनल्स पे शेयर किया, लेकिन वो अब जर्नी इस क्वार्टर और अगले क्वार्टर में दिखेगी, लेकिन पैसा बुक हो गया।
हाँ हाँ,
जैसे सास भी की बहू है, अनुपमा है, खतरों के खिलाड़ी है, लाफ्टर शेफ है, तो हमने कुछ एग्रीमेंट्स किए हैं बड़े चैनल्स के साथ।
मैं वो समझ गया, तो 4 crore एक्स्ट्रा एक्सपेंस ऐड का हुआ, 2 crore आपका न्यू सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन का हुआ, और वो ऑडिट वगैरह उसका कितना एक्सपेंस एक्स्ट्रा हुआ?
ऑडिट का हुआ
अराउंड 50 lakh।
ओके, सो नॉर्मल मतलब 6-7 crore का आपका एडिशनल। सो ये क्या रिकर करेगा सेकंड क्वार्टर में, या इट विल टेपर डाउन? हाउ शुड वन लुक एट गोइंग फॉरवर्ड? मतलब ये वन ऑफ
तो चलता रहेगा, हमारा तो मेन मकसद है अपनी ऑपरेटिंग लीवरेज का बेनिफिट लेने का। जैसे अब मैंने इस क्वार्टर में कोई खर्चा किया, अब इस क्वार्टर में जो पेशेंट बढ़ेंगे, जो नंबर ऑफ पेशेंट, जैसे मैं अभी चल रहा हूँ तो मैं अपनी हाईएस्ट सेल पे चल रहा हूँ, हाईएस्ट नंबर ऑफ बेड ऑक्यूपाइड है मेरे आज की डेट में, तो मैं तो उसका बेनिफिट अगले क्वार्टर में आएगा ही आएगा।
करेक्ट करेक्ट, ओके ओके ओके।
महीना जुलाई कंप्लीट हुआ है, मैंने अब तक की आज तक की हाईएस्ट सेल बुक करी है, हाईएस्ट नंबर ऑफ पेशेंट एडमिट हुए हैं लास्ट जुलाई में मेरे पास, जो कि पहले जून ने हाईएस्ट रिकॉर्ड तोड़ा था, अब वो जुलाई ने तोड़ा, अब अगस्त में उसके आगे चल रहा हूँ मैं।
करेक्ट, मैं समझ गया।
हमें ना क्वार्टर ऑन क्वार्टर में, मतलब मैंने कई बार बोला भी था, ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर मेरे को मत जज किया करें, मेरे को जज करना है ईयरली ऑन ईयरली करें। अगर मैंने एक साल का बोला 30% ग्रोथ आएगी तो आएगी, अगर मैंने बोला 1000 crore प्लस हम लेके आएंगे टर्नओवर तो आएगी, वो हमने उसकी प्लानिंग करी हुई है। हाँ, कोई अब हिंदुस्तान पाकिस्तान युद्ध लग जाए या कोई ईरान इराक अमेरिका कुछ हो जाए तो मैं कह नहीं सकता, अदरवाइज हमारे हमारी वर्किंग पूरी तैयार है और उसके लिए मेरी सीनियर मैनेजमेंट टीम भी ऑलरेडी नेक्स्ट लेवल की ग्रोथ पे काम कर रही है और मैंने हॉस्पिटल एक्सपेंशन और सबसे बड़ी बात है हॉस्पिटल ग्रोथ सब पे इकट्ठे एक साथ काम कर रहा हूँ मैं और मेरी जो दोनों चीजें है ना प्रोडक्ट भी और हॉस्पिटल भी इस पे मेरी बराबर नजर है और हॉस्पिटल पे फिर भी ज्यादा रहेगी। उसकी वजह क्या है क्योंकि अंत में तो मेरा टिकट साइज हॉस्पिटल से बनता है। मैं अगर ओटीसी भी बेच रहा हूँ ना ई कॉमर्स पे भी पेशेंट को बुकिंग कर रहा हूँ तो अंत में मैं उसको लेके हॉस्पिटल ही आ रहा हूँ पेशेंट को पटा के कि पंचकर्मा करवाने आ जा।
करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो इसमें आपने हॉस्पिटल का क्या कैपेसिटी अभी अभी 2400 है बेड कैपेसिटी?
अभी 2400 ऑपरेटिंग बेड है। अगर उसके हिसाब से ऑक्यूपेंसी देखेंगे तो इस बार मेरी 59% है 2400 बेड पे। 2400 ऑपरेशनल बेड है यानी कि मैंने 100 ऑपरेशनल बेड बढ़ाए हैं इस क्वार्टर में।
तो वो कैसे है FY27 में देख रहे हैं?
हाँ FY27 मैंने बोला था 3000 से 3500 ऑपरेशनल बेड करूंगा।
3000 से 3500?
हाँ 3000 प्लस ही करूंगा इस साल में। 3000 से 3500 करेंगे और 3 से 5 साल में मैंने 7 से 10 हजार का नंबर दिया हुआ है।
हाँ हाँ वो आपने दिया हुआ है। ओके।
इसी महीने एक नई स्कीम लॉन्च कर रहे हैं। जितने मेरे छोटे हॉस्पिटल हैं जिनके बेड कम चलते हैं मैं वहाँ बीपीएल कार्ड धारी और आयुष्मान योजना वालों के लिए एक डिस्काउंट स्कीम देंगे क्योंकि वो गरीब आदमी बेचारा भर तो सकता नहीं। तो जब आयुष्मान योजना आएगी तब मुझे सरकार पैसे देगी लेकिन तब तक मैं उनको डिस्काउंटेड रेट पे उन हॉस्पिटलों में एडमिट करना शुरू कर रहा हूँ अगले 10 डेज में। तब क्या होगा मेरा ऑक्यूपेंसी रेट बढ़ जाएगा और मेरा ऑपरेटिंग लीवरेज भी आ जाएगा क्योंकि पेशेंट तो भर्ती हो गए खर्चे तो मेरा चल ही रहा है।
Correct.
तो अगर मैं उनका 5000 पर बेड भी लूंगा उनसे तो भी मेरे को बेनिफिट है प्रॉफिट आएगा मुझे।
तो ये आयुष्मान योजना का क्या प्लानिंग है? आई मीन उसमें क्या
आयुष्मान योजना तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने करनी है।
हाँ
लेकिन वो अभी गवर्नमेंट के पोर्टल पे गवर्नमेंट की तरफ से मैसेज तो यह आया था कि पीएमओ से अप्रूव हो गई या मिनिस्ट्री में वो मिनिस्ट्री लेवल पे सेटिंग हो रही है उसकी मतलब जो भी उसके रेट सेट हो रहे हैं और अभी 4 दिन पहले ही गवर्नमेंट ने एक नया लेटर निकाला है। अगर आपको चाहो तो मैं सबको शेयर कर देता हूँ कि हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों को डांट लगाई है गवर्नमेंट ने जो आयुर्वेदा के इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट कर रही थी कि आयुर्वेदा को इतनी वैल्यू दो जैसे एलोपैथी को देते हो। अगर आपको चाहिए तो वो लेटर मेरे पास है। तो अभी वो एक हफ्ता पहले लेटर रिलीज हुआ है गवर्नमेंट से कि आयुष मतलब आयुर्वेदा कंपनियों को भी प्रॉपर उनके क्लेम भी पूरे रिवर्स करो और उनको कैश कर दो।
अंडरस्टैंड। और ये क्या एक दो महीने में आ जाएगा? ये
आयुष्मान योजना 2 महीने 6 महीने में जब तक आएगा आएगा। मैं अपना 10 दिन के अंदर आयुष्मान वाले पेशेंट भरने शुरू कर दूंगा।
अंडरस्टैंड। ओके
लेकिन मैं भरूंगा कैश में बट उनको डिस्काउंट देके ताकि मेरी ऑक्यूपेंसी बढ़े और मेरे डॉक्टरों का प्रैक्टिस हो जाएगा। तब तक जब तक आयुष्मान योजना असली में आएगी तब मेरे डॉक्टरों की प्रैक्टिस हो चुकी होगी ना केयर की लेने की एडमिट करने की डिस्चार्ज करने की। तो मेरा होमवर्क
दैट्स वेरी हेल्पफुल सर। आई मीन दैट वुड बी फ्रॉम माय साइड आई वुड लाइक टू विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।
थैंक यू सर। थैंक यू।
थैंक यू। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द लाइन ऑफ नवीन बेद फ्रॉम नुवामा एएमसी। प्लीज गो अहेड।
जी नमस्कार
नवीन। नमस्कार सर। थैंक यू सो मच सर। हमने लास्ट क्वार्टर तक 9 प्रोडक्ट्स लॉन्च कर दिए थे ओटीसी में तो आगे नेक्स्ट 4 क्वार्टर्स में क्या हमारे प्लान है कि हम कितने प्रोडक्ट हम लॉन्च करने वाले हैं और करेंटली ये 9 प्रोडक्ट में क्या रन रेट हमारी चल रही है इन टर्म्स ऑफ आर मंथली रेवेन्यूज?
सर मैं आपको अभी रेवेन्यू बता देता हूँ। इसमें आपके पास इसका बाइफरकेशन है कि हम ओटीसी से कितना कर रहे हैं और क्लिनिक से कितना कर रहे हैं। ये जो हमारा प्रोडक्ट रेवेन्यू है उसको बाइफरकेशन है।
अभी हमने
सर इस क्वार्टर में मेरी 3 करोड़ की सेल बढ़ी है ओटीसी के बिजनेस की वजह से क्वार्टर ऑन क्वार्टर। बट मैं एग्जैक्ट नंबर तो मैं आपको फिर मेल पे दे पाऊंगा। नानक जी दे देंगे।
ठीक है। नो प्रॉब्लम।
मैं वैसे आपको बता देता हूँ मैं जो मैंने अभी बताया था पहले कि क्वार्टर फोर में टोटल 4,87,000 लोगों को हमने कैटर किया था और क्वार्टर वन में 27 में हमने 5,34,000 लोगों को कैटर किया है।
ओके।
क्वार्टर फोर से क्वार्टर वन में मेरा जो नंबर बढ़ा है वो ईकॉम का ही बढ़ा है मतलब प्रोडक्ट का ही बढ़ा है जिसमें 2,28,000 को 2,64,000 किया और दूसरा मेरा नंबर बढ़ा है सीओडी का जो पेशेंट घर बैठे दवाई मंगवा रहा है वो 4,4500 से नंबर बढ़ा है और डे केयर में मेरा नंबर बढ़ा है 16,700 से 19,400 आया।
ओके और हमने जो 9 प्रोडक्ट लॉन्च किए थे तो हम कितने प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं ओवर द नेक्स्ट
9 प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए थे हमने ना ओटीसी में ज्यादा प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करे हमने ई कॉमर्स से कर दिए ओटीसी में भी खर्चा थोड़ा पड़ रहा है सर जो मेडिकल स्टोर वाला बंदा है ना 50% मार्जिन मांग रहा है तो उतने ही मार्जिन पे ई कॉमर्स का बिजनेस डेवलप कर रहा हूँ ज्यादा बढ़िया लग रहा है मुझे वो क्योंकि okay. अगर 50% में उनको देता हूँ मेडिकल स्टोर वाले को ये जो मेडिकल स्टोर का बिजनेस मॉडल है ना सर उसके लिए ना अखबारों में बहुत बड़ी बड़ी एड देनी पड़ती है टीवी पे भी बहुत खर्चा करना पड़ता है और प्रोडक्ट डेवलप करने में बहुत जोर लगता है तो मैंने एक दिमाग लगाया कि मैं उस सारे खर्चे को खत्म कर दिया है मैंने क्या किया उसी प्रोडक्ट को ना मैंने ई कॉमर्स में उतार दिया है और अखबारों में छोटी एड स्टार्ट कर दी है तो वहां से मेरे वेबसाइट पे वॉल्यूम बढ़ रहा है मतलब मैं ये अपना ही स्टोर क्रिएट कर दिया मैंने
आप सारा जो ई कॉमर्स में कर रहे हैं आप खुद के प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं कि आप कोई थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म पे भी उसको
ज्यादातर खुद के प्लेटफॉर्म पे है Amazon, Flipkart पे भी है लेकिन खुद का प्लेटफॉर्म भी डेवलप कर रहे हैं हम
ओके ओके एंड सर एक प्रोडक्ट पे स्पेसिफिक क्वेश्चन है इफ आई लुक एट योर वन ऑफ द की प्रोडक्ट विच इज पेट शुद्धि और उसको मैं एक कम्पीटिंग प्रोडक्ट से चेक करूं और उसके अगर आप इंग्रेडिएंट्स देखें लार्जली 80-85 इंग्रेडिएंट्स लिटरली आइडेंटिकल है सेम भी नहीं है बट आइडेंटिकल है तो व्हाट एक्सप्लेन्स कि आपके प्रोडक्ट के प्राइस में पेट शुद्धि में और पेट सफा में इतना बड़ा गैप ऑलमोस्ट 800 रुपए का 800 850 रुपए का गैप
सर उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है उसके प्रोडक्ट का 20% मेरी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट उनके प्रोडक्ट से 4 गुना है क्योंकि मेरा प्रोडक्ट ना पेट सफा नहीं है मेरा प्रोडक्ट खाली पेट नहीं साफ करता मेरा प्रोडक्ट लीवर की हेल्थ पे भी काम करता है मेरा प्रोडक्ट स्प्लीन की हेल्थ पे भी काम करता है मेरा प्रोडक्ट ओवरऑल मेटाबॉलिज्म पे काम करता है अग्नि पे तो आयुर्वेदा कंसेप्ट है दीपन पाचन कि सारी बीमारी की जड़ मंद अग्नि है वो सिर्फ पेट साफ कर रहा है मैं पेट साफ भी कर रहा हूँ साथ में प्रॉब्लम का जड़ पे काम भी कर रहा हूँ तो इसके लिए मेरी प्रोडक्ट का उनके मुकाबले लगभग 4 गुना है
एंड ऑल्सो इन एडिशन टू दैट यू नो वी आर यू मे बी ओनली कंपेयरिंग द ग्रैनुलर फॉर्मुलेशन बट देन यू नो देर आर डिफरेंट 4 शॉट्स एज वेल सो आर फॉर्मुलेशन इज एन अमैल्गमेशन एंड टूवर्ड्स अ बिगर फ्रेमवर्क ऑफ रूट कॉज
जैसे अगर आप प्रोडक्ट की बात करते हो पेट सफा से तो पेट सफा से आप मेरा पाउडर कंपेयर कर रहे होंगे तो उसमें मेरी एक अलग चीज डली हुई है शॉट 4 शॉट डले हुए ना उसका फॉर्मुलेशन बिल्कुल डिफरेंट है जो बीमारी की जड़ के लिए तैयार हुआ है
ओके गॉट इट थैंक
यू और वो सिर्फ पेट की साफ के लिए
सर मेरे को ना पेट साफ नहीं करना मेरे को पेट साफ क्यों नहीं हो रहा कारण भी ठीक करवाना है मुझे हिंदुस्तान में ना बीमारों की भी दुआएं लेनी है जिंदगी भर के लिए जीना सीखो को एक ब्रांड बना के जोड़ना भी है साथ में पेट सफा किसी ने एक बार खाया और मान लो उसका पेट साफ नहीं हुआ तो गाली भी देता है वो और मैं कह रहा हूँ कि मेरा प्रोडक्ट पेट भी साफ करेगा तुम्हारी बीमारी की जड़ पे भी काम करेगा
मोर टुवर्ड्स द गट मैनेजमेंट सिस्टम
ठीक है थैंक यू सो मच
थैंक यू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द लाइन ऑफ आशीष फ्रॉम इन्वेस्ट पीएमएस प्लीज गो अहेड
हाँ सर ये समझ जाता है ये जो लग्जरी वेलनेस रिजॉर्ट का जो मॉडल है उसमें हैव वी एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप विद सम एंटिटी की ये लीज किया है हमने थोड़ा सा इसका बताएंगे
अंकुश जी प्लीज आप एक्सप्लेन कर दो
प्लीज रिपीट द क्वेश्चन
अब वो कह रहे हैं कि जो मॉडल है आपका लग्जरी वेलनेस वाला इसको कैसे चलाने वाले हो सर एक बार बताना क्वेश्चन दोबारा
अच्छा सो आई वाज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इज दिस अ लीज प्रॉपर्टी दैट वी आर टेकिंग व्हेन समवन इज ओनर और वी आर
एब्सोल्युटली
जेवी विद देम वेयर इज अ रेवेन्यू शेयरिंग विल हैपन हाउ इज इट मॉडल्ड
सो बेसिकली दिस इज अ प्रॉपर्टी व्हिच इज ओन्ड बाय सम इंडिविजुअल हाउएवर वी हैव लीज्ड आउट Now the model that we are working on is that right now we have guaranteed 35 rooms out of which plus 80% of their spa area for our consultations and treatments. However, we have already provisioned out that when required, we will be taking additional inventory because when we'll be doing our camps, preventive camps, health camps that HRSG does and our team does, then we would be requiring bigger inventory. So yes, the lease is fixed, but that is fixed for X number of units, which we have already shared with the everybody, including giving the intimation. However, additional inventory can be added as and when required, and also for that, we have fixed a rate. In terms of the lease, what we have done is we have put in all the inclusions that one possibly cannot put to bring our operating cost down drastically.
Okay. So, how many years of arrangement is this to start with?
Right now, we have signed for 3 years contract to be further renewable on 3+3+3.
Okay. Second question would be, sir, there are properties which are existing, which are away from the city. So, for example, like the Panvel one is far, far off, and the occupancies there in such kind of properties seem to be on a much lower scale. So what is the plan for maintaining the occupancy there? Because it's so off that it doesn't seem to be the case that very difficult to get up on the facility side of these properties. Your thoughts on that, please.
You know, I would beg to differ onto that statement. Reason why? Because that's probably an individual's take. You know, a lot of people do prefer within city treatment and then to be boxed within a building. However, a lot of people preferentially, they have an inclination towards resort-style healing. For example, people, you know, either come from references or they come from obviously looking at our social media, or people talk to people. And then most of these people have also either these individuals or their loved ones or their family ones or extended friends, they have seen or heard about Meerut, which was our flagship in terms of resort-style healing. So people do prefer that when it comes to an integrated approach rather than just a very clinical, conventional approach to be in one building. So I don't see Panvel's proximity to be an issue because we are getting favorable response. And we have already, you know, this is a tried-and-tested model for our Meerut Shuddhi, you know, the Jina Seekho HIMSS Meerut is also at the same distance of near about 70 to 90 minutes proximity from central Delhi or from the airport itself. But that hospital is doing wonders.
Okay, so just to.
अगर आप देखोगे ना सर,
possible for you.
जो सर अंकुश जी, मैं एक बार आंसर दे रहा हूँ. जो
हाँ जी.
हमारा मेरठ वाला सेंटर है ना सर, वो शहर से बाहर है, आउटर पे है. हमारा अकेला एक सेंटर ही 15 करोड़ रुपए अप्रोक्सीमेट का रेवेन्यू देता है, मतलब 15 करोड़ रुपए एक. अब ऐसा ही मेरा जब पनवेल के मेरे अप्रूवल्स आ जाएंगे, अभी पनवेल का थोड़ा ओसी फायर ये चल रहा है, तो अभी वो 49 बेड का है, जैसे ही वो 250 बेड का बन जाएगा, वो भी मेरा रेवेन्यू को 4 गुना कर देगा, 5 गुना कर देगा. तो सर हिंदुस्तान में प्रोसेस ही ऐसा है कि कभी
और
फायर
लोग ना,
ऐसी, कभी पॉल्यूशन ऐसी, तो ये सब चलता रहता है, लेकिन वो एक
और लोग
का पार्ट है. अब ऐसे मनाली वाले पे ऑलरेडी सारी एनओसी आने के बाद ही हम स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट वो इसी महीने कर देते हैं हम, लेकिन जो हिमाचल गवर्नमेंट के लॉज है उनके अकॉर्डिंग हमने 1 महीने का एक्स्ट्रा टाइम लिया.
नहीं, और जो आप कह रहे हैं
हॉस्पिटल में चला ही नहीं आना चाहिए.
और जो आप कह रहे हो ना कि जो दूर होने की वजह से आपको लगता है कि बिजनेस पे इफेक्ट पड़ता है, तो वो ट्राइड एंड टेस्टेड मॉडल नहीं पड़ता है. रीजन वाई, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल, लोगों को दूर आज की डेट में उनको लगता है हीलिंग बेटर होगी, जो कि सही भी है कि आप अपने करंट सराउंडिंग से थोड़ा दूर जाते हैं, यू फील डिस्कनेक्टेड, यू आर मोर अलाइंड, एंड देन रेस्ट ऑफ द थिंग्स वर्क इन अ बेटर अलाइनमेंट एज वेल. तो जैसे इवन पनवेल हो जाएगा पूरे के पूरे ऑप्टिमल अपनी यूटिलाइजेशन पे और कैपेसिटी पे, वी विल पिक अप अ लॉट ऑफ मोर बिजनेस, बिकॉज लोगों को घर से दूर जाके लगता है कि यस, इट्स अ प्रोजेक्ट, आई नीड टू डू इट, एंड आई एम इन नेचर सराउंडेड बाय अ डिफरेंट एस्थेटिक्स एंड कंप्लीट डिफरेंट एनवायरमेंट.
थैंक यू सर,
आई टेक दिस ऑफलाइन, मे बी सम टाइम वी विल डिस्कस दिस.
श्योर, प्लीज प्लीज.
Thank you. We request all the participants that in order to ensure that the management is able to address questions from all participants, please limit your question to one per participant. The next question is from the line of Aditya Chheda from InCred Asset Management. Please go ahead.
Namaskar, Aditya ji.
Yes, sir. सर आपने बताया 30% ग्रोथ का आपका टारगेट है, तो क्वार्टर वन की तो बेस अच्छी थी, अब 30% इम्प्लाई करेगा कि Q2 से 250 करोड़ 280 290 करोड़ का रन रेट आना चाहिए, तो ये रैंप अप कौन से सेगमेंट से आपको एक्सपेक्टेड है गोइंग फॉरवर्ड? और
सर बराबर चलेगा दोनों ही, हॉस्पिटल बिजनेस और प्रोडक्ट बिजनेस दोनों बराबर डेवलप कर रहे हैं हम लोग। हाँ ये मैंने आपको पहले भी कॉन कॉल में बताया था 2-3 बार कि 45 और 55% में कभी कोई 2% बढ़ जाएगा कभी कोई 2% कम हो जाएगा, लेकिन मैं दोनों पे बराबर जोर लगा रहा हूँ क्योंकि दोनों मुझे एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, जैसे Q4 में मेरा जो सर्विसेज बिजनेस था 45% था और Q1 में मेरा 47 है और Q1 में मेरा लास्ट ईयर 54% था और वो क्योंकि उसमें सरकारी सेल जुड़ी हुई थी, गवर्नमेंट बिजनेस जुड़ा हुआ था 15 करोड़ का। अब मैंने बिना गवर्नमेंट बिजनेस के बिना उधार वाले बिजनेस के जो बिजनेस डेवलप कर रहा हूँ वो कैश का डेवलप कर रहा हूँ मैं। अगर मुझे आप किसी और हॉस्पिटल ग्रोथ से कंपेयर करोगे ना तो उनके यहाँ भी 10-15% पैसा, सॉरी 4% पैसा उनका भी क्रेडिट में फंस रहा है, लेकिन मेरी कंपनी भारत की पहली ऐसी कंपनी होगी जीना सीखो जहां अब उधार का पैसा नहीं फंसेगा, जो सीधा प्रॉफिट मॉडल पे काम कर रही है और कैश इन हैंड पे कैश रिच कंपनी बनती जा रही है।
सर हॉस्पिटल बिजनेस में पीबीटी फ्लैट है डिस्पाइट 11% ग्रोथ, तो इसमें न्यू सेंटर के कोई लॉसेस हैं क्या?
नहीं सर, हमारा न्यू सेंटर खुलता है 3 से 6 महीने में वो पे बैक कर देता है हमें को। हमारा वो बढ़ रहा है नंबर ऑफ, अभी हमने डे केयर बढ़ा दिया ना, हमने कई हॉस्पिटलों में एक नई फैसिलिटी स्टार्ट करी है कि अब आप एडमिट मत हो, आओ थेरेपी लो घर जाओ, क्योंकि अब हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी उसका भी कवर दे रही है। तो इस क्वार्टर में नंबर में चेंज आया ना हमारे, मैंने बताया था ना डे केयर वॉल्यूम में ईयर ऑन ईयर हमारा 31% का चेंज है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमारा 16% का चेंज है।
Got it, sir. और lastly, sir, आप कोई outlook देना चाहेंगे EBITDA margin और...
Sorry to interrupt, Aditya. We may request...
सर, मैंने तो clear बोला हुआ है ना कि मैं तो 27-30% के नेट प्रॉफिट और EBITDA 40% प्लस के कंपनी ही बनना रहना चाहूंगा आगे भी।
The next question is from the line of Sunil from VK Investments. Please go ahead.
नमस्ते आचार्य जी।
जी नमस्ते जी।
मुझे यही पूछना था, एक पहले पार्टिसिपेंट ने भी आपसे पूछा था कि हमारी जो इन पेशेंट ग्रोथ और 22% हुई है और आउट पेशेंट ग्रोथ 33% हुई है, उस बेसिस पे अपना रेवेन्यू खाली 13% बढ़ा है पंचकर्मा में, तो वो कैसे हुआ?
सर वो पंचकर्मा में ना सरकारी बिजनेस का माइनस भी तो हो गया ना, सरकारी बिजनेस
तो बेसिकली इस क्वार्टर में
वो भी पंचकर्मा में होता था। मान लो Q1 में वो 15 करोड़ का बिजनेस था और इस Q1 में वो 5 करोड़ का है, तो वो जो 10 करोड़ की सेल कम हुई है उससे वो पेशेंट के वॉल्यूम का नंबर तो कम हो गया ना, लेकिन वो
नहीं, आचार्य जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारा तो वॉल्यूम आईपीडी में बढ़ा हुआ है 33% और ओपीडी में 22% बढ़ा हुआ है ईयर ऑन ईयर, बट वो रेवेन्यू में ट्रांसलेट नहीं हुआ है। मतलब अगर आपके पास पहले जो पेशेंट थे 8,600 से 11,500 है, तो उस हिसाब से वो नंबर भी उतने ही बढ़ने चाहिए ना, 33% या 30%, तो क्या प्राइस कम हुई है कि कैसे हुआ है?
तो मुझे ना आपका क्वेश्चन समझना पड़ेगा नानक जी से, क्योंकि आप मुझे ना ऐसे नहीं परसेंटेज वाइज मुझे समझ नहीं आता, मुझे तो ये समझ आ रहा है कि पेशेंट नंबर बढ़ा हुआ है। नानक जी आप देखो क्या पूछ रहे भैया, क्योंकि ना मेरी बुद्धि इन चीजों में कम चलती है, जरा ये आरओसी परसेंटेज मुझे ये कम समझ आता है, वो तो ये समझ आता है।
नहीं सर, बेसिकली सर पेशेंट हमारे ज्यादा हुए आईपीडी में और ओपीडी में 22% और 33% रिस्पेक्टिवली, और हमारा जो पंचकर्मा रेवेन्यू है वो 13% बढ़ा हुआ है, तो सिर्फ उसका एक्सप्लेनेशन मुझे चाहिए था, वो समझना था।
हाँ तो सर इसका एक दो फैक्टर है जो डायरेक्टर से लेने हो कि हमारा जो इंक्रीमेंटल टिकट साइज है, वो टिकट साइज जो हमारा पर पेशेंट जो है उस पर थोड़ा सा हमने जो अपना टिकट साइज है वो रिड्यूस किया है,
तो गरीब आदमी के लिए हमने थोड़ा सस्ता किया है,
तो एक फैक्टर है
जो थोड़ा गरीब आदमी है ना सर, जो बेचारा
जी, जी,
जो बेचारा पे ही नहीं कर पा रहा, तो हमने उसका एक नया सेगमेंट स्टार्ट करा डिस्काउंट देने का, तो इस वजह से ऐसा हो सकता है।
अच्छा,
क्योंकि गरीब आदमी बेचारा पैसे दे ही नहीं पा रहा, वापस जा रहा था, इससे अच्छा मैंने बोला मेरा बेड खाली है इसको डिस्काउंट करके भर्ती कर दो। जैसे मैंने अभी बताया मेरे जो हॉस्पिटल में बेड खाली है, मैं आयुष्मान योजना के या पेशेंट लेने शुरू करूंगा 4,000-5,000 टिकट साइज पे, लेकिन उससे मेरी पेशेंट डॉक्टरों की ट्रेनिंग हो जाएगी, मेरे एक्सपीरियंस डॉक्टर बढ़ जाएंगे, क्योंकि जब तक आयुष्मान योजना भारत सरकार लॉन्च करेगी तब तक मेरी तैयारी हो चुकी होगी। तो उससे क्या होगा, अगली बार आपको फिर नंबर तो बढ़ा हुआ दिखेगा लेकिन टिकट साइज में आपको रिड्यूशन दिखेगा।
ठीक है, समझ गए सर। तो ये आप प्रपोर्शन कितना रखने वाले, अंडर प्रिविलेज या थोड़े जो अफोर्ड नहीं कर
पाते? मैं अभी 500 बेड को इस 10 दिन में शुरू कर दूंगा, जिनमें मैं गरीब पेशेंट लेने शुरू करूंगा 4,000 रुपए में, 5,000 रुपए में, 6,000 रुपए में।
तो अच्छा, तो उसमें रियलाइजेशन थोड़ी सी कम रहेगी बिकॉज डिस्काउंट
सर, नेचुरली बात है। लेकिन वो वहां के डॉक्टरों का तब तक कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा जब तक, और अगर मेरे को बिजनेस बढ़ाना हो ना सर, तो मैं सरकारी बिजनेस का हाईएस्ट 117 करोड़ किया था 24-25 में, जो लास्ट ईयर मैंने सिर्फ 35 करोड़ किया है। अगर मुझे सेल बढ़ानी है ना, तो सरकारी बिजनेस तो टिकट है मेरे लिए, एक केक है, हॉट केक है, मैं तो जब मर्जी उठा के खा सकता हूँ। लेकिन मैं जब तक गवर्नमेंट का पैनल शुरू नहीं हो रहा, पैनल ओ उनका जो एनएचए का पोर्टल है 2.0, जब तक वो पेमेंट को 3-4 महीने 6 महीने में नहीं करते, तब तक मुझे उसमें करने का बेनिफिट नजर नहीं आ रहा।
और इसमें ना, जस्ट टू ऐड टू व्हाट आचार्य जी एंड माय डियर कॉलीग नानक जी हैज मेंशन, आई वुड आल्सो लाइक टू शेयर विद यू दैट अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द इंक्रीमेंटल ओपीडी ना दैट केम फ्रॉम फर्स्ट टाइम कंसल्टेशन एंड स्क्रीनिंग पेशेंट्स हु आर स्टिल प्रोग्रेसिंग थ्रू द ट्रीटमेंट फनल। सो ऑब्वियसली देयर कम्स अ नेचुरल लैग बिटवीन ओपीडी एक्विजिशन एंड कन्वर्जन इनटू पंचकर्मा थेरेपीज।
और नहीं, हमने एक और चीज नोटिस करो ना, जो आपने पे नंबर 11 देखा है, वहाँ एक नंबर और देखो ना आप, सीओडी एंड कंसल्टिंग पेशेंट्स, वहां पे आप ईयर टू ईयर देखोगे तो 143% का चेंज है, और वीओपीडी कंसल्टेशन भी देखोगे ईयर ऑन ईयर तो 65% का चेंज है। मतलब हमारा कोई, क्योंकि क्या है, ये सारा बिजनेस इंटीग्रेटेड है आपस में। कोई पेशेंट वीओपीडी से कन्वर्ट होता है हॉस्पिटल में, कोई ओपीडी से कन्वर्ट होता है, कोई पहले प्रोडक्ट मंगवाता है, पहले हम पे भरोसा करता है, फिर हमारे यहाँ ज्वाइन करता है। तो सर ये सारा ना पेशेंट सिस्टम मैनेजमेंट ही ऐसा है कि एक पेशेंट दूसरे को भेज रहा है, दूसरा पहले वाले को भेज रहा है, फिर कुछ लोग रिपीट आ रहे हैं। अभी मेरा रिपीट बहुत अच्छा चल रहा है, जो मेरा एक सक्सेस रेट था कि मैं रिपीट को कामयाब करूं। तो जब मैं हॉस्पिटल जाता हूं ना, मुझे बहुत सारे पेशेंट मिलते हैं, सर हम दूसरी बार पंचकर्मा कराने आए हैं, सर हम तीसरी बार कराने आए हैं। तो पेशेंट ना, दुनिया बदल रही है। जो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था लास्ट फोन कॉल में, कि एक टाइम था जब गाड़ियों के बेचने में कमाई होती थी, और एक टाइम आया जब गाड़ी बेचने में कमाई कम हो गई और गाड़ियों की सर्विस में कमाई बढ़ गई। अगले 1-2 साल में ना आपको ये बिजनेस में शिफ्ट दिखेगा कि हमारे पास बीमार लोग नहीं आएंगे, हमारे पास बीमार नहीं होने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाएगी।
वेरी गुड सर, वेरी गुड। ये सेकंड क्वेश्चन,
ये एक तरह से देश की सेवा भी तो है ना, कि हम बीमार लोगों में पैसा नहीं ढूंढ रहे, हम स्वस्थ लोगों से पैसा ढूंढ रहे हैं। मतलब घर में जो हम सुनते थे हेल्दी मनी, बरकत वाला पैसा, अच्छी नियत वाला पैसा, हम उस तरफ जा रहे हैं सर। जो बाकी हॉस्पिटलों में ग्रोथ है, नेचुरली बात है, वहां तो बीमार आ रहा है सर, वहां तो पेशेंट घर बेच के, प्लॉट बेच के, मंगलसूत्र बेच के आ रहे हैं। लेकिन मैं जो बिजनेस मॉडल डेवलप कर रहा हूँ ना सर फ्यूचर के लिए, वो ऐसा डेवलप कर रहा हूँ कि भैया बीमार नहीं होना चाहते हो तो भी आ जाओ।
जी जी सर, वेरी क्विकली एक सेकंड क्वेश्चन है मेरा, दैट इज माय सेकंड क्वेश्चन।
मे वी रिक्वेस्ट दैट यू रिटर्न टू द क्वेश्चन क्यू,
सर आप मेल कर दो, हम रिप्लाई कर देंगे सर। थैंक यू।
द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द लाइन ऑफ प्रियांशु जैन फ्रॉम ग्रोथएक्स, प्लीज गो अहेड।
नमस्कार सर
जी। नमस्कार
सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे हमारा जैसे क्वार्टर एंड होता है, तो हमारे पास जो हमारा उस क्वार्टर का जो रेवेन्यू है उसका हमारे पास डेटा कब तक आ जाता है?
नानक जी बताओ ना, हमारे पास हमारा डेटा तो सॉफ्टवेयर भी है सर।
नहीं, हमारा रियल टाइम,
हमारा तो कोई, हमारे तो सॉफ्टवेयर चेंज हो रहे ना, सेल्सफोर्स आ गया था, तो हमारे पास डेटा रियल टाइम होता है। अब तो हमारी कुछ ऐसे डैशबोर्ड भी बन चुके हैं हमारे, कि हमें रियल टाइम विद इन 6 मिनट्स बाद ही हमारी अपलोड हो जाता है और हमें दिख जाता है क्या कहाँ पे नंबर चेंज हो रहा है।
तो सर बस एक रिक्वेस्ट थी कि अगला जैसे क्वार्टर, जैसे हमारा अप्रैल मई जून, तो जून के एंड अगर 30th है, तो हमारा मतलब फर्स्ट वीक में अगर आप हमारे को, बिकॉज बहुत जल्दी डेटा आ जाता है, तो स्टार्टिंग के कुछ 3-4 या 5 दिनों में अगर वो एक क्वार्टरली अपडेट के साथ अगर आप वो अपलोड करना चालू कर दे कि इतना हमारा प्रोडक्ट के साथ हुआ है और इतना हमारा जो हमारी हॉस्पिटल बिजनेस का हुआ है, तो वो
प्रॉब्लम कहाँ है, हम क्यों रिजल्ट को आप देखो, पहले नोटिस करो कि पहले हमारा क्वार्टर का रिजल्ट जो था 15 तारीख 16 तारीख 17 तारीख को आया करता था। पिछले क्वार्टर में हमने रिजल्ट दिया 30 तारीख को, इस क्वार्टर में हमने रिजल्ट 8 तारीख को दे दिया, 7 तारीख को ही दे दिया। तो हम पहले से अपनी एफिशिएंसी बढ़ाते जा रहे हैं। एक्चुअल में क्या है, अभी ना ग्रैंड थॉर्नटन हमारे साथ जो हमारा ऑडिटर है और इंटरनल ऑडिटर फॉर्बिस मजारिस है, उनको जुड़े हुए भी एक एक साल हुआ हमारे साथ, तो वो लोगों की ग्रिप भी बढ़ती जा रही है ना। तो जैसे जैसे हम और आगे बढ़ते होंगे ना, हमारा रिजल्ट और पहले आने लग जाएगा।
सर रिजल्ट के लिए नहीं सर, क्वार्टरली एक अपडेट बस अपना कि इस महीने के इस क्वार्टर की अपनी इतनी सेल हुई है वो क्वार्टर एंड
हम डाल सकते हैं नानक जी। सर वो तो फिर इंटरनल न्यूज से लिया की बात, तो कैसे डाल सकते हैं
सर वो ना? नहीं नहीं सर, ये क्वार्टरली अपडेट कंपनी जैसे हमारे मतलब हमारी जैसे और भी कंपनीज है, ये हर क्वार्टर के एंड के बाद दे सकते हैं ये अपडेट के फॉर्म में।
हम चेक कर लेते हैं सर, अगर दे सकते होंगे तो जरूर दे देंगे, अगर कोई लीगल और कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू नहीं है तो दे सकते हैं।
बिल्कुल सर, ये मतलब एक सेबी की रेगुलेशन के अंदर ये कि क्वार्टरली अपडेट की रिजल्ट तब तक नहीं आते, तो अपन जब हमारा क्वार्टर एंड होता है तो उसके बाद अपन एक ऐसा अपडेट दे सकते हैं जिससे
हम चेक कर लेते हैं सर, अगर ऐसा पॉसिबल होगा तो हम जरूर करेंगे।
बिल्कुल सर बिल्कुल,
नंबर नंबर रियल टाइम रहते हैं।
हाँ बस इसलिए कह रहा
था कि हम
ट्राई करते हैं, अगर नानक जी चेक कर लेंगे, अगर पॉसिबल होगा तो हम जरूर करेंगे।
ओके सर, थैंक यू सर,
वेलकम सर,
थैंक यू। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द लाइन ऑफ अक्षय फ्रॉम एके इन्वेस्टमेंट्स, प्लीज गो अहेड।
हाय सर, एम आई ऑडिबल?
जी नमस्कार।
नमस्कार सर, सर फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत अच्छा रिजल्ट है। सर मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि इंटेरो के पार्टनरशिप के बिना भी अभी करंटली हमारे प्रोडक्ट बिजनेस में अच्छा ग्रोथ आ रहा है, तो क्या हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले फ्यूचर में एक महीने बाद जब हमारा इंटेरो में प्रोडक्ट बिकना चालू हो जाएगा तो प्रोडक्ट बिजनेस में थोड़ी सेल्स एक्सेलरेट होगी?
हाँ हाँ सर, जब इंटेरो शुरू हो जाएगा तो और ग्रोथ आएगी, हम अपना ई कॉमर्स भी करते रहेंगे और इंटेरो के साथ भी काम करेंगे, और एंटेरो जैसी हमने 2-3 कंपनियां और फाइंड आउट की है, उनसे भी हमारी टीम की रेगुलर मीटिंग चल रही है।
ओके सर, थैंक यू। एंड सर मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि हमारी 3-4 फोन कॉल पहले बात हुई थी, तब हम ये बात कर रहे थे कि जिनका प्रीमियम कस्टमर पे फोकस है, जो मतलब ये सेगमेंट में है प्रीमियम, वो उनका नहीं चल रहा है, वो माइनस में चल रहा है अगर आपको याद है, तो वो हम इसमें ऐसा क्या अलग कर रहे हैं, जो मनाली में हमने सेंटर ओपन किया है तो उसमें हम क्या कर रहे हैं कि जैसे मतलब हमारी ऑक्यूपेंसी रेट अच्छी रहेगी और प्रीमियम कस्टमर्स हमारे पास आएंगे?
सर हमारे पास ऑलरेडी इंक्वायरीज आ रही हैं, हमारे पास ऑलरेडी इंक्वायरीज आ रही हैं, उनके ऑलरेडी हमारे पास फीडबैक आया हुआ है, हमारे पास लोगों ने कॉन्टेक्ट करना शुरू कर दिया मनाली के नाम से, जैसे ही शुरू होगा पेशेंट आने शुरू हो जाएंगे, और फिर हम एक लग्जरी वेलनेस सेगमेंट अलग से अपना डेवलप कर ही रहे हैं साथ साथ में।
ओके सर, और सर मेरे को
और सर मैं ना एक आप सबको एक बात बोलना चाहूंगा, मैं ना एक 5 लाइनें तैयार करी हैं आप सबको बोलना चाहूंगा कि हम लोग ना पहले हमारा फोकस रीच बढ़ाने पे था, अब हम रीच भी बढ़ा रहे हैं और हम ना डेप्थ भी क्लियर कर रहे हैं अपनी, मतलब डेप्थ भी क्रिएट कर रहे हैं, और हम लोग बेहतर कॉर्पोरेट गवर्नेंस, आप देखो हमारे बोर्ड पे नए लोग आए हैं, हमारा प्रोसेस ऑफ सिस्टम बेटर होता जा रहा है, हम सेल्स फोर्स ड्रिवन कंपनी बन गए हैं, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर भी ओरेकल का आ गया है, हम डॉक्टर्स की ट्रेनिंग पे बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, हमने पिछले 2 महीनों में पिछले क्वार्टर में हमने डॉक्टरों के 4 बैच सक्सेसफुली क्लियर किए हैं जिनमें उनकी ट्रेनिंग पे काम किया है, जिसका इफेक्ट हमें दिखने लग गया है कि डॉक्टरों के व्यवहार में बड़ा बदलाव आया है, हम माइंड हीलिंग पे काम कर रहे हैं, हम पेशेंट एक्सपीरियंस की जर्नी को बेहतर बनाने के लिए सॉफ्टवेयर में चेंजेस कर रहे हैं, ऐप डेवलप कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी बेटर कर रहे हैं, क्लिनिकल प्रोटोकॉल नए लागू कर दिए हमने जो पहले कभी नहीं थे हमारे, अब वो प्रोटोकॉल रिसर्च बेस्ड है, क्लिनिकल ट्रायल पे हमने और काम शुरू कर दिया है, डाटा और एनालिटिक्स की पूरी टीम हम अपना डिजिटल सीईओ बना रहे हैं कि हमारी कंपनी डिजिटलाइज सबको दिखे, मतलब हमारे डैशबोर्ड इतने बढ़िया बन रहे हैं कि हमें रियल टाइम पे मिनट टू मिनट पता लग रहा है कि हमारी कंपनी में काम क्या चल रहा है, और हम जो अपना स्टाफ है उनके लिए हमने कुछ बड़े ट्रेनर्स हायर किए कॉर्पोरेट लेवल के जो रेगुलर उनकी पर्सनैलिटी पे काम कर रहे हैं, हमने पूरी कंपनी में यूनिफॉर्म कल्चर लेके आ रहे हैं और अब अपनी क्षमता का बेहतर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, कैपिटल एलोकेशन भी बेटर करते जा रहे हैं, मतलब हमारा अब लक्ष्य ना खाली बड़ा बनना नहीं है, बड़ा बनने के साथ साथ एथिकल ट्रस्ट बेस्ड, जैसे दुनिया एक एग्जांपल क्रिएट करती है ना, उस तरफ बढ़ रहे हैं। तो हमें ना क्वार्टर ऑन क्वार्टर मत देखा करो, मैं फिर सबको बोलूंगा हमें हमारी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ के बेसिस पर जज करना, अगर करना हो तो। हम लॉन्ग टर्म के घोड़े हैं, हम लोग भाग रहे हैं ना, तो हम जहां पे जाना चाह रहे हैं ना वो पहुंच के छोड़ेंगे वहां पे हम। कि भारत में बीमार नहीं पड़ने वाले लोगों की संख्या, मैं बीमार पड़ने वाले लोगों की संख्या से बढ़ा दूंगा। और एक टाइम आएगा जब लोग प्रिवेंशन के लिए आएंगे, बीमार होने के बाद तो आते ही है, लेकिन बीमार नहीं होने वाली दुनिया भी क्रिएट कर रहे हैं हम, जिस पे जोर लग रहा है। और हमें बस आप सबका और पूरी टीम का सपोर्ट चाहिए जी। नेक्स्ट।
ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।
थैंक यू। वी टेक दैट एज लास्ट क्वेश्चन। आई नाउ हैंड द कॉन्फ्रेंस ओवर टू द मैनेजमेंट फॉर क्लोजिंग कमेंट्स।
मैडम मैंने, मुझे लगता है जो अभी बोला वो क्लोजिंग कमेंट ही था मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने घड़ी देखी ना, आपने बोला था एक घंटे की कॉल है, तो मैंने तो वो क्लोजिंग समझ के दिया था कि आप लोग ना, हम जो है ना, हम लंबी रेस के घोड़े हैं, मैं फिर बोल रहा हूँ। और मैं आप सबसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, जितने लोग जुड़े हुए हैं ना, जैसे हम शोर मचा रहे हैं ना कि बीमार पड़ने की वेट मत करो, बीमार होने से पहले आ जाओ, तो मैं भी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब लोग भी बीमार होने की वेट मत करो, पहले ही पंचकर्मा करवाओ। तो आप लोग ज्यादातर लोग मुंबई के हो, तो मुंबई में नवी मुंबई, अंधेरी, थाने, पनवेल में हमारे वेलनेस सेंटर, जो कम हॉस्पिटल्स हैं, तो आप जाओ, सारे हेल्थ इंश्योरेंस हमारे यहाँ चलते हैं। बीमार होने के बाद तो सब जा ही रहे हैं हॉस्पिटल, लेकिन क्या कोई ठीक हो रहा है? वो एक कुचक्र में फंस रहा है और फिर वो बार 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 बीमार पड़ रहा है। लोग कैंसर में कीमो रेडिएशन के चक्रव्यूह में चल रहे हैं, एक बार किडनी फेल हो जाए तो डायलिसिस शुरू हो जाता है, तो जिंदगी भर चलता है, ट्रांसप्लांट की नौबत आ जाती है। हार्ट प्रॉब्लम वाले पेशेंट को जिंदगी भर दवाई खानी पड़ती है, लीवर फेल हो जाए तो ट्रांसप्लांट कराना पड़ता है। तो मैं आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, हमारी जो मुहिम है ना कि पूरे भारत को स्वस्थ बनाना है और लोगों को बीमार पड़ने से पहले बुलाना है, तो प्लीज हमारी उसी मुहिम पे भरोसा करो कि वो ही मुहिम ही भारत को एक नई दिशा दिखाएगी और हम एक स्वस्थ भारत बना पाएंगे, वरना हमें ये बीमार भारत कोई फायदा नहीं देगा हमें कोई। तो बीमार भारत में आप फायदे मत ढूंढो, आप स्वस्थ भारत में फायदे ढूंढो। तो एक इकोसिस्टम डेवलप कर रहे हैं जिसमें हमें जोर लग रहा है, टाइम लग रहा है, और हम एक क्वार्टर में अगर कोई चीजें करते हैं तो नेचुरली बात है उसका इफेक्ट अगले, दूसरे, तीसरे, चौथे क्वार्टर में आता है। तो आप वेट एंड वॉच रखो, मेरा टारगेट वही है, 3000 करोड़ की टर्नओवर साल की, 1000 करोड़ का पैट मार्जिन, मैं उसी टारगेट पे लगा हुआ हूँ। लेकिन मुझे उसके लिए नींव मजबूत करनी थी, जिसके लिए मैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस और प्रोसेस सिस्टम, डॉक्टर, बेहतर पेशेंट एक्सपीरियंस, टेक्नोलॉजी, क्लिनिकल प्रोटोकॉल, डेटा एनालिटिक्स, डिजिटल सीईओ, बेहतर क्षमता का उपयोग और बेहतर हमारे कैपिटल एलोकेशन, और अभी मैं डे केयर सेंटर की भी नई चेन शुरू करने जा रहा हूँ, जिसका होमवर्क हो गया है, वो जल्दी ही एग्जीक्यूट होनी शुरू हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच, और उम्मीद करता हूँ आप सब लोग भी जिंदगी भर स्वस्थ रहोगे और हमेशा स्वस्थ रहने के लिए लगे रहोगे। धन्यवाद मैडम।
थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। जैसा कि आचार्य जी ने बोला कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज भी ढेर हैं, हमारे पास विजन की कोई कमी नहीं है, एग्जीक्यूशन का बड़ा स्ट्रेटेजिक रोड मैप भी है, और सबसे इम्पोर्टेंट बहुत ही प्रोफेशनल और कमिटेड टीम है जो इस विजन को रियलिटी में बदलने के लिए डेडिकेटेड है।
थैंक यू अंकुश जी, थैंक यू मैडम, थैंक यू नानंद,
थैंक यू जी,
थैंक यू एवरीवन, थैंक यू एवरीवन।
Thank you. On behalf of Go India Advisors, that concludes this conference. Thank you for joining us, and you may now disconnect your lines.